अब तो राजा तो बिल्कुल चुप जात, उसकी तो बोली बिल्कुल बंद हो गई। इस पर फिर कहते, और राजा जी आपने कहा कि तुम उन्मत्त हो, प्रमत्त हो, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। इसका उत्तर देते हैं कि उन्मत्त मत्त जडवत् सो संस्थान गतस्य निर्भीर चिकित्सित अर्थ ज्ञान भवता शिक्षित न स्तब्ध प्रमत्त सचपिष्ट पेशर। हे वीर, मैं जानता हूं कि दंड देने में आप बहुत दूर हैं, बहुत बार दंड दिए हैं, चिकित्सा किए हैं बहुत लोगों की, लेकिन हमारी चिकित्सा आप नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ और हूं, क्या हूं उन्मत्त मत्त जडवत्, मैं देखने में उन्मत्त मत्त, मत्तवत और जडवत दिख रहा, लेकिन मैं हूं नहीं, मैं जड़ नहीं हूं, उन्मत्त नहीं हूं, मत्त नहीं हूं। संस्थान गतस्य, मैं अपनी संस्था में स्थित हूं। संस्था कहते हैं स्वरूप, मैं अपने स्वरूप में हूं, मैं देहस्थ नहीं हूं। आप चिकित्सा करेंगे देह की, हमारी नहीं, आपका देह तो आपका जूता देह पर बैठेगा, मुझको छू भी नहीं पाएगा। मैं अपनी संस्था में हूं। संस्थान गतस्य मैं भी चिकित्सा अर्थ क्यों, आप यदि मेरे देह को पीटेंगे तो आपको क्या अर्थ प्राप्त होगा, क्या लाभ होगा आपको, कुछ भी नहीं। आप मुझको मार ही नहीं पाएंगे, मैं देह से उड़ चुका हूं, देह से अलग हूं। देखिए बहुत महत्व की बात कह रहे हैं, हमारी चिकित्सा करने से आपको क्या मिलेगा। भौतिक शिक्षित मान लीजिए आप खूब पीटे हमारे देह पर, अब घर से पीटिए, लाठी से पीटिए, जूता से पीटिए, लेकिन देह को पीटो हमको नहीं। नहीं इस देह को कुछ पुरस्कार देने से हमारा कोई मतलब सधने वाला है, न इसको काटने मारने से हमारा कुछ नुकसान होने वाला। जो देह से मुक्त हो जाता है उसके लिए अर्थ अनर्थ दोनों समान। आपके पीटने से क्या लाभ होगा। तो चक्रवर्ती का जी कहते हैं कि राजा कहता है कि तव रोदनादि दर्शन मन मनस्तृप्ति भवति, जब मैं तुमको मारूंगा और तुम रोओगे तो तुम्हारा रोदन देखते कि हमारे मन में तृप्ति होगी, हाँ अब ठीक हो गया। तो इसी का उत्तर देते हैं कि चाहे तुम लाख देश भी मार हो, मैं रोने वाला नहीं हूं, क्योंकि देह की व्यथा का मुझे अनुभव ही नहीं है, देह से मैं पूर्णतः अलग हूं। तो जब मैं रोऊंगा नहीं तो मुझको तुम मारोगे और देखो कि रो नहीं रहा है तो तुमको और क्रोध होगा, तुम अपने ही क्रोधाग्नि से जलने लगोगे, तुमको ज्यादा दुख होगा, हमको कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा मारना तो कौन सा व्यर्थ होगा। स्तब्ध प्रमत का सच पिष्ट पेशा, इस पिष्ट पेशन के समान होगा। मान लीजिए कोई वस्तु बहुत पिष दी गई है बारीक और इसको कोई बड़ा बनाना चाहता हो, जैसे आटा को पुनः गेहूं बनाना चाहता हो और उसको पीसे पीसे और ऊपर से, तो पीसे हुए को पीसने से वस्तु और बारीक होती जाएगी। उन्हें कह रहा हूं कि अगर मान लो मैं देह से परे नहीं हूं, अगर हम मैं पागल हूं, स्तब्ध हूं, जड़ हूं, तो क्या मरने से मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई पागल मरने से ठीक होता है बताओ। जो भी धो रहा हूं पाल की, तुम मार करके बेहोश कर दोगे तो वो भी नहीं धो पाऊंगा, तो पिष्ट पेशों के समान तुम्हारा प्रयास बेकार होगा। जो भी भाई धो रहा है तो मारो, खुद देख मारो, अगर मैं स्तब्ध हूं, मुक्त नहीं हूं, स्तब्ध हूं, जड़ हूं, पागल हूं, तो किसी भी पागल को मार करके ठीक किया गया है, नहीं मारूंगा, फिर चिकित्सा कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, किसकी चिकित्सा करोगे। और स्वयं कह रहा है कि तुम स्तब्ध हो, प्रमत्त हो, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, यही उपाय है चिकित्सा का। अरे कहीं हॉस्पिटल में भर्ती करो, मानसिक अस्पताल में, कहीं कहीं तो इस तरह से देख से मार करके चिकित्सा होती है पागलों की, कहीं ऐसा है कि शिक्षा दो, सिखाओ, कुछ करो, तो तुम्हारा जो प्रयास है मुझे पीटने का, वो पिष्ट पेशन होगा, पीसे हुए को पीसने का समय होगा, अब मैं सुधरने वाला नहीं। यदि मैं मुक्त हूं तो तुम्हारे मरने का कोई असर नहीं होगा,
और यदि मैं स्तब्ध हूं तो सुधरने वाला नहीं हूं। तो दोनों हालत में तुम्हारा जो दंड देना होगा बेकार होगा। एक है इनका अंतिम प्रवचन। और इस संसार में मान लीजिए बहुत से दिपाए के हैं, दंड विभाग है, लोगों को दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उसे लाभ क्या होता है? तो मारने से कोई कृष्ण भक्ति तो ग्रहण कर नहीं लेता है। और जब तक कृष्ण भक्ति न ग्रहण करे तब तक कोई सुधार नहीं हुआ, वो चिकित्सा नहीं मानी जाएगी। चिकित्सा तब मानी जाएगी कि कोई माला उठाया और भगवान का नाम जपने लगा तो माना जाएगा अब स्वस्थ हो रहा है, स्वस्मिन स्थित हो रहा है, अब अपने स्वरूप में हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे तो संसार में कृष्ण भक्ति के बिना चाहे किसी को पीटा जाए, शिक्षित किया जाए, कुछ भी किया जाए, कोई लाभ नहीं। वो सपना में पीटने के समान, सपना में कोई किसी को पीट रहा है, शिक्षा दे रहा है, अच्छा पैसा दे रहा है, खिला रहा है, दोनों बेकार, दोनों व्यर्थ। जब भगवान से कोई संपर्क ही नहीं हुआ तो चाहे दंड विभाग हो, चाहे कुछ भी हो, मारो पीटो, कोई भी जेल से भक्त बनकर तो निकल नहीं रहा है, तो पिष्ट पेशन है। यह एक प्रकार से उसकी बातों का बहुत बड़ा विरोध था राजा रघुवन। इतना कहकर चुप हो गए और पालजी को लिए ही थे आमने कहारों से कहे कि चल 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 ढो गए, इशारा किया चलो ढो गए और ज्यादा नहीं बोले, केवल पांच श्लोक बोले। एतावत अनुवाद परिभाषा, परिभाषा मैंने भाषा, अनुवाद परिभाषा बोले, सिद्ध अर्थ को जब हम पुनः कहते हैं तो उसको अनुवाद कहा जाता है। कोई बात पहले कह दी गई है और हूबहू उसी को चाहे किसी भी भाषा में हम कहें तो उसको अनुवाद कहा जाता है। तो उसकी बातों का अनुवाद किए, खंडन नहीं किए। एक प्रकार से उसने कहा कि तुम रास्ता नहीं चले हो, तो कहते हाँ मैं रास्ता नहीं चला, शरीर चला है, मैं नहीं चला, मैं नहीं थका हूं, मैं भार नहीं ढोया हूं, मुझमें मोटापन नहीं है। तो जो वो कहा था वही ये कह रहे हैं, इसको अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद के भाषण में ही उसके वचनों का उत्तर दे दिए। प्रति उद्विज उद्विज मैंने बोले तो मुनि थे, भगवान की लीला का मनन करने वाले, तो क्षमशीला भगवान में बुद्धि लगी हुई थी और उपरोक्त अनात्म निमित्त इस जड़ देह में, प्राकृत देह में जिसके कारण बुद्धि होती है उसको निमित्त कहते हैं। मतलब अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण देह को व्यक्ति मैं मान लेता है, तो उनका तो अज्ञान ही समाप्त हो चुका था, उनमें अविद्या थी नहीं। हम लोग अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण देह को मैं मान रहे हैं, जानते नहीं है कि हम कौन है, हम देह से भिन्न है, इसीलिए देह को मैं माने। उनका अज्ञान सदा के लिए निरस्त हो चुका था, तो फिर भी अपने भोग के द्वारा कर्म को समाप्त करने के लिए पुनः राजसीविका ही ढोना चालू थी। उन्होंने सोचा कि हमारे कर्म में लिखा होगा सीविका ढोना, तो सीविका ढोकर कर्म फल समाप्त किया जाए। इतना दीन भाव था उनमें, मैं अपने कर्म बंधन में हूं, ये हूं। अब कर्म बंधन उन पर नहीं था, फिर भी इतना कह करके, इतना प्रवचन करके और कहे ठीक है चलो 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 राजा जी को पहुंचाओ, सत्संग में जाना है ऐसा बोले। तो वो भी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था राजा रघुवंश। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते सह च अपि वह भी, जैसा ये थे लगभग वो भी वैसा ही था। राजा होने के कारण अपने व्यवहार में वो बेचारा सोचता था कि मैं राजा हूं, ये हूं, लेकिन था वास्तव में जो कि व्यक्ति। तो सह चौपी पांडवे या चापी पांडवे या सिंधु सौवीरपति, सह सिंधु सौवीरपति, सिंधु और सौवीर देश का वह राजा रघुगण तत्व जिज्ञासायाम, तत्व जिज्ञासा में, तत्व की प्राप्ति के विषय में, मतलब भगवत प्राप्ति के विषय में सम्यक श्रद्धया अधिकृताधिकार, सम्यक श्रद्धा के कारण अधिकृत अधिकार, वह पूर्ण योग्य व्यक्ति था, उसका अधिकार था, उसकी योग्यता थी तत्व को समझने में। वास्तव में ऐसी बात नहीं होगी ट्रेन में जाते समय बस भेंट हो गई तो चलो कुछ कथा कहानी चालू हो जाए। वह उसी के लिए जा रहा था, जिस तत्व जिज्ञासा के लिए वो जा रहा था वो तत्व जिज्ञासा यहां चालू हो गई। योग्य तो था ही, श्रद्धया अधिकृताधिकार, अधिकृत अधिकार, अधिकार का अर्थ योग्यता और अधिकृत माने प्राप्त योग्यता। राजा रहुगढ़ बिल्कुल योग्य व्यक्ति था तत्व ज्ञान के लिए, और क्योंकि उसकी सम्यक श्रद्धा थी, वास्तव में भगवान को जानना चाहता था, इसको सम्यक श्रद्धा कहते, जानना चाहता था, इसीलिए तो राजकाज छोड़ करके भगवान के पास जा रहा था। तो वह क्वालिफाइड व्यक्ति था, अधिकारी था। तब हृदय ग्रंथि मोचनम दू वजह बचा आसूत्य बहुत जो ग्रंथ समर्थन, जब वो उनका प्रवचन सुना केवल पांच श्लोक का, तो वह तुरंत शास्त्रों से मिलाने लगा कि उनकी बात तो बिल्कुल योग ग्रंथ के सम्मत था, योग ग्रंथों से संदर्भित है। वास्तव में ये जो भी बोल रहे हैं शास्त्र से बोल रहे हैं, भगवद्गीता से या भागवत से उपनिषद से जो कुछ बोल रहे हैं ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत बोल रहे हैं। तो इस बात को लख लिया और हृदय ग्रंथ विमोचनम, जो राजापना का अहंकार था शरीर में, शरीर को जो मैं मानने की ग्रंथि बंधन हो गया था उसको तोड़ देने वाला प्रवचन था। तो राजा अनुभव किए कि हमारी विद्या पांच ही श्लोक में खत्म थी हो रही, इतनी बलवती वाणी थी। वास्तव जब ठीक ठीक शास्त्र का प्रवचन किया जाता है तो उसका बहुत बड़ा बल होता है। हमसे कभी कभी लोग कहते हैं महाराज अब इतना संस्कृत का श्लोक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुजोग ग्रंथ समझता पहले हमें इसको लेना है। हम लोगों को अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, योग ग्रंथ मतलब भक्ति योग ग्रंथ, बहुजोग ग्रंथ सम्मत, वो बहुत बहुत पुस्तकें पढ़ा था योग की किताबें, योग मतलब भक्ति योग ज्ञान जो इन सब इन ग्रंथों को पढ़ा था, पहले भी सत्संग करता था, बड़े बड़े पंडित महात्मा उसके घर में आते थे, पहले ही कहा गया है कि वृद्ध उपासित वृद्ध लोग वृद्धों की उपासना किया था, ज्ञान वृद्धों की उपासना किया, जानता था कि उनकी बात सुनकर एक तो चकित हो गया कि इस तरह का व्यक्ति शास्त्र जानता है जिसे न नहाने का नियम मालूम है, न खाने का, न बोलने का, पहले तो नहीं जानता था लेकिन पांच श्लोक जब वे बोले तो समझ गया। हृदय ग्रंथि मोचनम, हृदय ग्रंथि को खोल देने वाला, विद्या को नष्ट करने वाला वचन, बीज वचन ब्राह्मण का वचन था, इसलिए त्वरया तुरंत पांच श्लोक जमी पूरा हुआ, त्वरया अवरुह्य तुरंत पालकी से उतर करके पाद मूलम उपस्थित साक्षात बंदरों प्रणाम करके और थर थर कांपने लगा, यदि मैंने क्या अपराध किया है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, ये तो साक्षात भगवान के समान है, इनकी बात बहुत ऊंची है, अज्ञान नष्ट हुआ और अब क्षमा कराने लगा अपने दुर्वचनों के लिए। विगत मृतदेव स्मय, मैं राजा हूं वह अभिमान तो पूर्णतः चला गया, विशेष व्रत केवल पांच श्लोक सुनते ही यह भावना चली गई कि मैं राजा हूं। देखिए सामने इस तरह का व्यवहार करना बड़ा कठिन है, जो राजा कहारों के सामने डांट रहा था इनको जो भरत जी को, अगर उसे क्षमा भी मांगनी होती तो आजकल का आदमी होता तो एकांत जो होता थोड़ा एकांत होंगे तब बैस वांछा कल शुरू करूंगा, सबके सामने कैसे करो। अब वो ऐसा नहीं था, और वास्तव में अपराध की क्षमा इस तरह से होती है, जब सबके सामने अपराध किया है तो सबके सामने क्षमा होनी चाहिए। नियम पहले तो बहुत बोला था तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, ये हूं वो हूं, मैं जमराज के समान तुम्हारा प्राण ले लूंगा, तुम नहीं जानते हो, लेकिन जब पांच श्लोक सुना तो सारा अभिमान चला गया और पालकी से उतर कर चरण में लौट गया और क्षमा पर उदम उवाच इस तरह बोला, क्षमा कराते माफी मांगने लगा। यह है योग्य व्यक्ति का लक्षण, वो अपनी लौकिक प्रतिष्ठा नहीं देखता है, तत्व का अभिलाषी व्यक्ति उसकी दृष्टि भक्ति पर रहती है, उसे तो बाहर का अनुसंधान नहीं रहता है। राजा रहोगे को यह विचार नहीं रहा कि कहार क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे कि क्या हो गया, राजा इतना नीच गिर गया, इस आदमी के चरण में गिर रहा है, इसका विचार नहीं रहा। वो वास्तविक योग्य व्यक्ति है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सम्यक श्रद्धया अधिकृताधिकार, योग्य व्यक्ति का अधिकार था उसका, क्वालिफाइड व्यक्ति था। यही राजा रघुगढ़ की योग्यता जब भरत जी ने स्नेह उत्पन्न कर दिया। ज्ञानी लोग भी हम हर एक समय ज्ञान नहीं देते हैं, दशमस्कंध में लिखा गया है गिरयो मुमुचुस तो हम क्वचित न मुमुचुस यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानी में बढ़ते न। पर्वतों से कभी कभी पानी निकलता है, झरने निकलते हैं, कभी बंद हो जाता है, बरसात में झरने निकलते हैं और काल में बंद हो जाते हैं। इसी तरह से ज्ञानी लोग कभी कभी ज्ञानामृत कोई अधिकारी पाकर देते हैं, नहीं तो चुप। ज्ञान अमृत है तो ज्ञानामृत कभी कभी देते हैं, अधिकारी मिल गया तो जैसे प्रहलाद महाराज बच्चों को दिए तो ये बच्चे श्रद्धालु थे, और जब भरत जी ने राजा रघुगण को दिए, नारद जी ने मृगारी को ज्ञान दिए, इस तरह बहुत सी कथाएं हैं। सब समय सब जगह ज्ञान नहीं दिया जाता है, यह योग्य व्यक्ति था, उसकी योग्यता ही दिखाई जा रही है कि राजा का अभिमान छोड़ करके चरण में गिर गया और रोने लगा, क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो कहता है कष्टम निगूढ़ोसी दुधाना दुधर सुसूत्र कतमोधूत कस्यास कुत्र कस्मात क्षेमायश्चेदिमोत शुक्ल तुम कह निगूढ़श्चर से, आप कौन है जो इस तरह भेष छिपा करके विचर रहे। सबसे पहले जानने की अभिलाषा हुई कि आप कौन है, कौन का कौन है, मतलब आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका गांव कहाँ है, आपका आश्रम कहाँ है, आप कौन है। बहुत दुखी हो गए राजा रघुगण, लेकिन इसके साथ ही साथ भीतर प्रसन्नता हो रहे थे कि इतने बड़े भक्त का संग मिल गया, मेरी सारी शंका मिट जाएगी, मैं भगवान को पा जाऊंगा, ये आशा हो गई। उन्होंने देखा कि इतना निर्विकार व्यक्ति, इतना आक्षेप करने के बाद भी इनके मुख से अमृत वाक्य निकल रहा है, कोई मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं, कुछ नहीं, क्रोध नहीं, तो इससे राजा रघुगण बहुत प्रभावित हुए। तो पूछ रहे हैं कस्टम निगूढ़श्चरसित, आप कौन है जो इस तरह भेष बदल करके चल रहे हैं। मतलब उनका वेश ऐसा था उससे कुछ भी नहीं पता चलता था कि ये गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी है कि सन्यासी है कि वानप्रस्थ है, कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि क्षत्रिय है, कुछ पता नहीं चल रहा। तब ध्यान दे करके देखा ध्यान से तो वो सूत्र लटक रहा था जमे हुए, तो वो कहता है कि सूत्रम विभर्षि, आप जनेऊ धारण किए तो द्विजानम कतन, आप ब्राह्मण में से कोई हैं, आप कोई ब्राह्मण में से हैं। तो मानो जब भरत जी ने कहा क्यों क्यों मुझे ब्राह्मण कह रहे हो, तो कहते हैं विभर्ष सूत्र, आप सूता टांगे हुए हैं, विभर्ष जनेऊ लगाए, इसलिए मैं अनुमान करता हूं कि आप कोई द्विज हैं। यह द्विज का अर्थ ब्राह्मण ही नहीं होता है, वायस क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों का द्विजाति संस्कार होता है, उनको द्विज कहते हैं, दो बार जन्म हो वो जन्म धारण कर। तो आप जन्म धारण किए हैं तो आप ब्राह्मणों में से कोई हैं, द्विजों में से कोई हैं, या कोई अवधूत आप हैं। मैंने भगवान दत्तात्रेय के बारे में कुछ सुना है कि वे इसी तरह विचरण करते हैं, तो अवधूतों में से कोई अवधूत तो आप नहीं है। अवधूत का मतलब होता है तत्व शरीर आदर है, जो शरीर का आदर न करे, न बढ़िया से कपड़ा पहने, न
संधि करे न शरण लगावे कोई खंड नहीं उसको अवधूत करते। लेकिन जब व्यक्ति का मन भगवान में रम जाता है तब शरीर की उपेक्षा होने लगती है, अपने आप जान बुझ करके नहीं। कुछ लोग तो जान बुझ करके समाज को ठगने के लिए दिखाते हैं कि मैं अवधूत हूं, अवधूत नहीं वो निर्लोज हो गया, लाज छोड़ दिया, बीच बाजार में मन धड़म घूमने लगता। आज के युग में तो इतना पाखंड है कि अगर कोई भी उपाय न हो पूजा लेने का तो कपड़ा खोल करके घूमिए, सब लोग प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। और कोई वृक्ष के नीचे वृक्ष में चिथड़ा बांध करके और कटोरी में राख लेकर के बैठ जाइए और कोई भी आवे तो उस पर फेंकिए राख, तो वहां तो हजार दो हजार आदमी रोज आएंगे निश्चित भभूत देते। ठीक होना है अपने कर्म से, अगर कहीं ठीक हो गया तो हल्ला होता रहे बाबा जी के आशीर्वाद से ये हो गया वो हो गया। और भूत बनने में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो भगवान के बहुत उन्नत भक्त होते हैं उनमें कोई कोई अवधूत होते हैं, नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहा जाता है, सावधूतम। तो कोई आप अवधूत तो नहीं है। और कस्यासि, कस्यासि आप किसके हैं, मतलब किसके पुत्र हैं या किसके शिष्य हैं, कस्यासि आप किसके हैं, कुत्रत्य आप कहां से हैं, आपका गांव या आश्रम कहां है, ये पूछ रहे हैं। यह सब इसलिए पूछ रहे हैं पूरा पता लग जाएगा तो इनके घर से संबंध करेंगे, पूरा क्षमा मांगेंगे, इनके लिए कपड़ा भेजेंगे या वस्त्र और अन्न भेजेंगे, बहुत सेवा करेंगे, पता लगाना चाहते हैं, या वहां ले जाएंगे सत्संग करेंगे। जैसे आपसे पालकी ढोवाया हूं वैसे इस पालकी में मैं ढोकर आपको ले चलूंगा आपके घर, आप कहां के हैं कैसे हैं, इस तरह से राजा बहुत दुखी होकर के बोल रहे हैं। पर किस कारण से आए थे, यहां तो कोई घर द्वार गांव दिख नहीं रहा है, वहां किस लिए आए थे, आप कहां के हैं और किसके पुत्र, ये तो चुप हैं, ये बोल नहीं रहे, हम लोग बताएंगे लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। फिर राजा रघुवर यह शंका कर रहे हैं कि क्षमा नश्चिमत शुक्ला चे, यदि हमारा कल्याण करने के लिए ही आप आए हैं, मेरा हित करने के लिए आए हैं, तो कहीं आप शुक्ल तो नहीं है, शुक्ल मत तो भगवान कपिलदेव, बिल्कुल शुक्ल गर्म कर भगवान कपिलदेव का एक नाम है शुक्ल, तो कहीं आप भगवान कपिलदेव तो नहीं है जो मुझ सेवक की इच्छा को पूरी करने के लिए वेश बदल कर हैं मेरे सामने आए हैं। ये शंका होती है, लेकिन मैं भगवान के पास जा रहा था उनसे सत्संग करने, उनकी कृपा प्राप्त करने, तो कहीं वही भगवान को नहीं इस रूप में आ गए हैं, कहीं आप भगवान कपिल देव तो नहीं है। फिर जरभरत जी ने कहा कि इससे क्या मतलब है, मैं किसका पुत्र हूं, किस गांव का हूं या भगवान हूं क्या हूं, मैं तो आपका सिंका बाहर बाहक हूं, तो कोई बात पूछने की जरूरत नहीं, चलिए हम आपको ढोकर के ले चल रहे हैं, ये क्यों पूछ रहे हो, क्यों उतर गए पालकी से, चलिए चलिए प्लीज तो चलिए हम आपको ढोएंगे, ये सब पूछने की क्या जरूरत। तो इस पर राजा रघुवर कहते हैं कि नहीं, हो गया पालकी पर चढ़ने जीवन भर के लिए, इसके बाद राजा रघुवर किसी सवारी पर चढ़े नहीं कभी, हो गया, मुझे बहुत भय हो रहा है आपके अपराध से, आपके अपमान से, मेरा नाश हो जाएगा, मैं आपसे सुविधा ढोआया, आप पर आक्षेप किया, इतना किया, मुझे बहुत भय हो रहा है मेरा सर्वनाश हो जाएगा, या मेरी कृष्ण भावना तो रसातल में चली जाएगी आपका अपराध करके, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं और किसी भी विषय से उतना नहीं डरता हूं जितना मैं ब्राह्मण के अपराध से डरता हूं, मैं और किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता हूं, आठ लोकपालों का नाम बताया है यहां पर,
इस विश्व को भगवान ने आठ जोन में बांटा है, आठ डिपार्ट और आठ जीवी से निरुक्त किया है, आठ लोकपाल। कोई जल विभाग देखता है, कोई ताप विभाग देखता है, कोई हवा विभाग, कोई कृषि, जगत के पालन के लिए सब वस्तु आवश्यक। तो भगवान ने आठों लोकपालों को एक एक अस्त्र दिया है स्पेशल, तो जनता का पालन करने के लिए, लोक का पालन करने के लिए अस्त्र बहुत आवश्यक है। असुर आक्रमण करते हैं, बुरे लोग डिस्टर्ब करते हैं जगत में, तो वो लोकपाल उस अस्त्र से उनका दमन करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया इस जगत में कोई अस्त्र नहीं कर सकता। तो कौन कौन है वो बता रहे हैं कि मैं विश्वम के सूर्यराज वज्रा, मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता। अगर वो भी मुझे मारने के लिए आ गए तो मैं उनसे लड़ जाऊंगा। या मान लीजिए हमें मार भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, शरीर बदलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण का यदि अपमान हो जाएगा तब तो भक्ति ही नष्ट हो जाएगा और बहुत दुर्गति को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहा था मैं सूर्यराज के वज्र से नहीं डरता हूं और त्रयक्ष के सोम से नहीं डरता हूं। त्रियक्ष मतलब त्रिनयन भगवान शिव, उनके तीन नयन है, एक नयन ललाट के बीच में है जिसे प्रलय काल को खोलते, तो वे सोम लिए रहते त्रिशूल, और प्रलय काल में उस त्रिशूल से बहुत दर्द करते हैं प्राणियों का, दिग्गजों का, सबका, चार दिशाओं के दिग्गजों को अपने सूल में गूंथ लेते हैं मार मार कर, ऐसा लिखा गया है भागवत में, और तांडव नृत्य करते। तो उनके त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं और यमराज के दंड से भी नहीं डरता हूं, सबको दंड देते हैं, दंड सबको मार, सबको मरना पड़ता। और इसी तरह से पांच लोकपालों को नाम दे रहे थे, मैं अग्नि अर्थ सोम अनिल गुप्त का अग्नि देव के अस्त्र से नहीं डरता हूं, चंद्र देव के अस्त्र से नहीं डरता हूं और वायु देवता के तथा वित्त वित्त का पालन करने वाले कुबेर जी के अस्त्र से नहीं डरता हूं। जितना मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं उतना और किसी चीज से डरता हूं। पहले के सभी ब्राह्मण वैष्णव होते थे, भगवान विष्णु के भक्त होते थे, इसीलिए इतना भय हो रहा है। और वास्तव में राजा रघुवीर बहुत अपराध किए थे। राजा परीक्षित को एक कथा लास्ट में सुन करके रोने लगे कि हाय हाय, मैं भी एक ब्राह्मण का अपमान किया था, केवल मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया था और मुझे इतना विस्मय साथ मिला, लेकिन राजा रघुवीर कितने भाग्यशाली हैं, इतना बड़ा अपराध करके फिर भी वे कृपामृत प्राप्त किए, फिर भी भक्ति प्राप्त किए, कितना भाग्यशाली राजा रघुवीर थे, मैं तो अभागा हूं। तो सुखदेव गोस्वामी उनको संतोना दिए, नहीं नहीं परीक्षित, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी गर्भ में भगवान ने तुम्हारी रक्षा किया, एक किया वो किया, तुम राजा रघुवीर से भी अधिक भाग्यशाली। तो संतोना देते हैं कथा। तो राजा इस पर अपमान किए, दक्षिणा मांग रहे हैं, तदग्रह यशो जडो निबोधो विज्ञान बेजो विचरस्य पार, आप अपार हैं, आपकी महिमा को जानना मन और वाणी से परे है, आपका विज्ञान रूपी बल छिपा हुआ है, आप अपने भक्ति बल को ज्ञान को छिपा करके निगूढ़ विचर रहे हैं, तो द्रोही आप बताइए, आप असंग इसलिए विचरण कर रहे हैं कि कोई आपको जान न जाए, इस तरह अपने को छिपा करके घूम रहे, असंकार तो अकेला, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति तो कम से कम दो चार हजार चेला लेकर साथ में चलेगा है कि नहीं, जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो भी दस बीस चेला लेकर चलता है, चुप रहता है, चलते हैं सब लोग, कभी अकेला नहीं है। तो आप तो असंग है, अपने को छिपा करके चल रहे हैं, कोई भेद न खोलने पाए। तो जब भरत जी ने कहा कैसे आप समझ गए कि मैं बहुत पहुंचा हुआ महात्मा हूं, तो कहते हैं बचाओ से जो व्यग्रस्तन साध हो नानक क्षमन को मन साथ भेद, आपकी बात से मैं जान गया कि आप बहुत बड़े, बात से और आपके व्यवहार से, व्यवहार मतलब इतना आक्षेप के बाद क्रोध नहीं आया, आपके मुख पर आनंद की मुस्कान है, और आपकी जो बात है वो तो योग शास्त्र की बात है, गीता भी योग शास्त्र है। कृष्णार्जुन संवाद योग शास्त्र, योग शास्त्र भगवान की प्राप्ति का उपाय बताता है, इसलिए इसको योग शास्त्र कहते हैं। तो आपकी बातें योग शास्त्र की बातें हैं। तो हे साधो, हे दूसरों का कार्य साधने वाले, दूसरों का हित करने वाले, जो दूसरे का काम साधता है उसको साधु कहते हैं। अपना काम भी साधता है, जो भजन करता है दूसरे से कराता है उसको साधु कहते हैं। आपकी बात से मैं जान गया कि आप महान हैं, लेकिन मैं इतना कर्कश हृदय वाला हूं कि आपकी बात मेरे हृदय में छेद नहीं कर रही है। मेरा हृदय बड़ा कठिन, मतलब आपकी बात मैं समझ रहा हूं कि बिल्कुल उचित है, फैक्ट है, कुछ समझ रहा हूं लेकिन पूरी नहीं समझ रहा। अभी हमारे हृदय में संसंदेह है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो दुर्भाग्य ने कहा कि अरे आप राजा हैं, आपको कहां फुर्सत है कि आप सुनेंगे और सत्संग चले, इसके लिए कुछ टाइम चाहिए ही चाहिए। तो कहते हैं हम सब, मैं इसी के लिए राज छोड़ करके जा रहा, एकदम फ्री टाइम है, चलो 10-20 वर्ष तक आपका प्रवचन चले, मुझे यहीं बैठना। अपनी योग्यता या अपनी ज्ञानार्थिता को व्यक्त कर रहे हैं।